আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। জানাশীন রাসূল, খলিফায়ে আউয়াল, আফজালুল বাশারি বাদাল আম্বিয়া বিত্তাহকিক, সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, নবী পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কে জানিসার খলিফা আর সাবেকুন আল আউয়ালুন মে সে আর হর লিহাজ সে এক মুনফরিদ মকাম সাহাবা মে রাখতে হ্যায়। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে আপকো বেহদ মোহাব্বত থি। এক মর্তবা হাজির হুয়ে বারগাহে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে আরজ কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফিদা কা উম্মি ওয়া আবি, সরকার মেরে মা বাপ আপ পে কুরবান, মুঝে তিন চিজে পসন্দ হ্যায়, এক আপকে পাস ব্যাঠনা, দূসরে আপকে চেহরা মুবারক কো দেখনা, আর তীসরা আপনা সব কুছ আপ পর লুটানা। গৌর কিজিয়ে কি ইয়ে তিন চিজে কিতনি অহম হ্যায়। সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু কো নবী পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কে পাস ব্যাঠনা কিতনা পসন্দ থা, হমেশা বারগাহে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে হাজির রহতে থে। সুবহ হো, দুপহর হো, শাম হো, রাত হো, হমেশা হুজুর কি বারগাহ মে হাজির রহতে থে। ফরমায়া কি মুঝে তিন চিজে পসন্দ হ্যায়, এক আপকে পাস ব্যাঠনা ইয়ে মুঝে পসন্দ। আব জরা সা গৌর কিজিয়ে কি খলিফায়ে আউয়াল জানশীন রাসূল সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু কো হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাস ব্যাঠনা কিতনা পসন্দ থা কি হর জগা সরকার কে সাথ। হুজুর মক্কে মে হ্যায় তো মক্কে মে আবু বকর সাথ হ্যায়, মদিনে মে সাথ হ্যায়, হিজরত মে সাথ হ্যায়, জঙ্গে বদর মে সাথ হ্যায়, উহুদ মে সাথ হ্যায়, হুনাইন মে সাথ হ্যায়, গজবে খন্দক মে সাথ হ্যায়, হর জঙ্গ মে সাথ, হর সফর মে সাথ, হর হজর মে সাথ। হুজুর মক্কে মে হ্যায় তো সিদ্দিক আকবর সাথ হ্যায়, হিজরত ফরমা রহে তো সিদ্দিক আকবর সাথ হ্যায়, মদিনে মুনাররা মে তো সিদ্দিক আকবর সাথ হ্যায়, হর গজবে মে, হর জঙ্গ মে, হর সফর মে সিদ্দিক আকবর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু নবী পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কে সাথ হ্যায়। ইয়াহা তক কি সারি জিন্দেগি সাথ, আজ রোজে মে ভি সাথ, কাল হশর মে ভি সাথ, আর জন্নত মে ভি সাথ। এসা সাথী আর এসা সাহাবী কে মসাহিবত কো জিস পর নাজ হ্যায় ওয়ো সিদ্দিক আকবর, জিসকো নবী পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম নে হিজরত কে সফর মে আপনে সাথ রাখনা পসন্দ কিয়া ওয়ো সিদ্দিক আকবর, জিসকে মুতালিক ফরমায়া জো জন্নতি কো জমিন পর চলতা হুয়া দেখনা চাহে ওয়ো আবু বকর কো দেখ লে। জিস জামাত মে আবু বকর হো উসমে কিসি কো ইমামত কা হক নাহি, ফরমায়া মানে সবকে এহসানোঁ কা বদলা চুকা দিয়া সিওয়ায়ে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু। আচ্ছা, পহলি চিজ আপকে পাস ব্যাঠনা পসন্দ, দূসরি চিজ আপকে চেহরে আনোয়ার কো দেখনা ইয়ে মুঝে পসন্দ। দিগর সাহাবা জব নবী পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কি বারগাহে আকদস মে হাজির হোতে তো নজরে ঝুকা কর ব্যাঠতে, সরকার কে চেহরে মুবারক পর নজর ডালনে কি তাব নহীঁ রাখতে থে, আর সিদ্দিক আকবর চেহরে মুবারক সে নজর হটাতেই নহীঁ, মুসলসল ব্যাঠে হ্যায়, মুসলসল চেহরে আনোয়ার কি জিয়ারত কর, ওয়ো দেখনে কি তাব নহীঁ রাখতে, ইয়ে নজর হটাতেই নহীঁ। হর এক কি মোহাব্বত কা আন্দাজ মুখতালিফ হ্যায়, তো দূসরি চিজ জো বয়ান কি, আপকে চেহরে কো দেখনা ইয়ে মুঝে পসন্দ, আর তীসরি চিজ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনা সব কুছ আপ পর লুটানা ইয়ে মুঝে পসন্দ। সিফ জবান সে নহীঁ কাহা বলকে আমালি তৌর পর সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নে ইয়ে বতা দিয়া কি মে अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर सकता हूं, और करके दिखा दिया। ग़ज़वे तबू का मौका आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया मुसलमानों लश्कर की तैयारी के लिए तावुन करो, जिस सहाबी के पास जो कुछ था, जिसकी जैसी हैसियत थी, जो दे सकता था, जो कुछ दे सकता था, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक लाकर बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए और कुल सामान के दो हिस्से किए, एक घर वालों के लिए और एक बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने के। घर वालों के लिए सामान छोड़ा और जो बकिया सामान था उसको एक गठरी में लपेट कर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, ये मैं जंग की तैयारी के लिए, यानी जो सामान हरब खरीदना है, जो भी चीजें हैं उसकी तैयारी के लिए जाहिर पैसा चाहिए, तो ये सामान हाजिर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरकता लि अहलिका या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा सामान घर वालों के लिए और आधा आपकी बारगाह। कहा बैठ जाओ, बैठ गए। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं दिल में सोच रहा हूं कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से आगे बढ़ गया, ये हर नेक काम में मुझसे आगे बढ़ जाता है। अब जरा सा गौर कीजिए, हमारी कैफियत क्या है कि हम दुनियावी कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके पास एक मकान है तो मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे पास भी एक होना चाहिए, इसके पास दो हैं तो मेरे पास दो, इसके पास दो गाड़ियां तो मेरे पास भी दो, इसके पास इतनी दौलत तो मेरे पास भी थी। हम दुनियावी तौर पर एक दूसरे से हिर्स हवस करते हैं, बहस लगाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुर्बान जाओ उन सहाबा पर कि जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे मगर दीनी मामलात में, नेक कामों में, इसने नेकी की है तो मैं इससे बढ़कर नेकी करूं। फारूक आजम कहते, मैंने दिल में सोचा हर नेक काम में, हर नेक मामले में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मुझसे आगे बढ़ जाते। आज मैंने ऐसा काम किया कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, यानी आधा सामान मैंने घर वालों के लिए और आधा मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने पेश कर दिया। लेकिन इश्क के तो अंदाज ही निराले। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, कुल का कुल सामान समेटा और वो सब का सब लाकर बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दी। कुल का कुल सामान, कोई चीज ना छोड़ी। क्यों? इश्क ने कहा होगा आज तो महबूब ने मांगा है सब दे दो, आज तो महबूब ने मांगा है सब दे दो, उन्हीं का तो है, ये जान भी उन्हीं की है, ये माल भी उन्हीं का है। सब का सब सामान ले आए और लाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये माल मौजूद। सरकार ने एक निगाह मुबारक डाली, फरमाया, हल तलक तले अहलिका या अबा बकर। क्या फरमाया? हल तरक तले अहलिका या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा। अब आप देखिए दोनों जुमलों में फर्क है। सैयदना फारूक आजम आते हैं रजी अल्लाह ताला, आधा सामान छोड़कर आधा लेकर, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जुमला क्या है जो जबान मुबारक से अदा हुआ? मा तरक तले अहलिका या उमर, ए उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और जो सब कुछ लेकर आते हैं, कुछ भी छोड़कर नहीं आते, यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, अब जुमला मुबारक क्या है? हल तरक तले अहलिका या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा। सरकार ने अपने जुमले ही से बता दिया कि मैं जानता हूं ये आधा छोड़कर आ रहे हैं, ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं, ये आधा छोड़ के आ रहे हैं, ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सरकार ने पूछा अबू बकर रजी अल्लाह ताला घर वालों के लिए क्या छोड़ा, अल्लाह और उसका रसूल काफी, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। यह नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह काफी है, नहीं, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफी। जो जबान मुबारक से निकला था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सब कुछ आप पर लुटाना ये मुझे पसंद है, तो सिर्फ जबान से नहीं कहा, अमली तौर पर उसका मुजाहरा करके दिखा दो। हिजरत की रात भी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं आपके घर पे, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने जितने भी पैसे थे सब साथ ले लिए, एक तिजोरी सी छोटी सी बनाई थी उसमें से सब कुछ लिया, सफर में जरूरत पड़ सकती है खाने के लिए पीने के लिए दीगर अशिया के लिए, सरकार को कोई तकलीफ ना पहुंचे, मेरे पास पैसे हो तो मैं उससे चीजें खरीद सकता हूं, जितना भी सामान था सब ले लिया, माल खास तौर पे माल पैसे सारे ले लिए, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत घर वालों के लिए कुछ ना छोड़ा। वो जानते थे इन्हीं के दम से सब कुछ है, इन्हीं के दम से सब कुछ है, इनकी एक निगाह करम होगी यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का इश्क ये है, एक मरतबा आपके साहबजादे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर उन्होंने एक बात कही, बाबा जान एक जंग में आप मेरी तलवार की जद में थे, जंग होती है ना तलवारों से, तो अक्सर ऐसा होता है कि आदमी लड़ते लड़ते किसी और तरफ उसकी तवज्जो है और दूसरा जो मुजाहिद है वो तलवार से उसका सर कलम कर दे, तो ऐसा मौका आया होगा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तलवार से किसी और के साथ जंग कर रहे हैं, और इनके साहबजादे जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने देखा कि ये मेरे बाप हैं तलवार की जद में हैं लेकिन तलवार नहीं चलाई, वारिदे गिरामी से क्या कहा, आप मेरी तलवार की जद में थे, यानी मैं तलवार से आपकी गर्दन उड़ा सकता था लेकिन बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। अब सुनो आशिक रसूल का जवाब, बेटे ने तो ये कहा आप मुसलमान थे ना, यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तरफ से लड़ा है, साहबजादे काफिरों की तरफ से लड़ा है, साहबजादे फरमाते हैं कि आप मेरी तलवार की जद में थे लेकिन बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। अब आशिक रसूल का जवाब सुनिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते बेटा तुमने तो मुझे बाप होने की वजह से छोड़ दिया लेकिन खुदा की कसम अगर तुम मेरी तलवार की जद में होते मैं बेटा होने की वजह से हरगिज ना छोड़ता, मैं तलवार चला देता, इसलिए कि मेरे पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ ये मामला होता कि मेरे सामने आने वाला दुश्मन रसूल है और इसे खत्म करने में इताअत रसूल है। गौर कीजिए, यह है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का इश्क कि अगर बेटा भी सामने हो तो उसका भी सर तन से जुदा कर दिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम से, और ऐसी मोहब्बत की, ऐसी टूट कर मोहब्बत की, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, हर वक्त हुजूर के साथ रहे, यहां तक कि आज रोजे में भी सरकार के साथ हैं, कल हशर में भी और इंशाअल्लाह ताला जन्नत में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। ये शान है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक अंगूठी निकाली, अबू बकर ये ले जाओ इस पर अल्लाह का नाम लिखवा कर ले आओ, क्या नाम, अल्लाह, इसमें अल्लाह, ये चले गए, इन्होंने लिखवाया अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाकर सरकार की बारगाह में पेश कर, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने वह अंगूठी देखी तो उस पर लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद अबू बकर। सरकार ने फरमाया अबू बकर हमने तो कहा था सिर्फ अल्लाह का नाम इस पर लिखवा कर लाओ, तुमने अल्लाह ताला के साथ हमारा नाम और उसके साथ अपना नाम भी क्यों लिखवाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि अल्लाह का नाम हो और आपका नाम ना हो, तो मैंने अल्लाह ताला के इसमें मुबारक के साथ आपका नाम नामी इसमें गिरामी लिखवाया लेकिन खुदा की कसम अपना नाम मैंने नहीं लिखवाया। ابھی انہوں نے یہ عرض کیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات فرماتا ہے، ابو بکر نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، اللہ نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور ابو بکر کا نام نہ ہو۔ صدیق اکبر نے ہمارے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا نام لکھوایا، ہم نے ان کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی لکھوا دیا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار نے فرمایا، جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے حیات میں 17 وقتوں کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 17 وقتوں کی نماز۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہے، صحابہ کھڑے ہیں انتظار میں، جماعت تیار ہے۔ بلال حبشی عرض کرتے ہیں، جماعت تیار ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں بند ہیں، ایک کیفیت طاری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیفیت دور ہوئی، فرمایا کیا ہوا؟ سرکار، جماعت تیار ہے، صحابہ کھڑے ہیں۔ فرمایا، مرو ابا بکری ہیں یوسلیا بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر کیفیت طاری ہو گئی، مبارک آنکھیں بند ہو گئیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، آگے کیسے بڑھیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی سوال، جماعت تیار ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا، مرو ابا بکری ہیں یوسلیا بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر وہ کیفیت دور ہوئی، تیسری مرتبہ جب وہ کیفیت دور ہوئی، فرمایا، جب تم سے کہہ دیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، پھر انہوں نے جا کر کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے قلب کو سنبھالتے ہوئے، کہ رقیق القلب تھے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے مبارکہ میں مصلی رسول پر کھڑے ہوں۔ قلب کی عجیب کیفیت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سرکار کی طبیعت کا بھی فکر ہے، لیکن حکم رسول بھی ہے، جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع ہوئی، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بائیں جانب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں بائیں جانب سرکار کا روضہ مبارک، وہیں ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ ڈلا ہوا تھا، اور اسی کھڑکی کے قریب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے۔ جماعت کی آواز آئی، سرکار نے طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، پردہ ہٹایا۔ اب آپ غور کریں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور درمیان سے کوئی چیز ہلے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہلی۔ وہ صحابہ جو ایک دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکیں تو چین نہیں آتا تھا۔ 2 یا 3 دن ہو گئے تھے جو حضور کی زیارت نہیں کی، چہرہ مبارک کو دیکھا نہیں، دلوں کو تسکین نہیں پہنچی، اور جب یہ خبر پہنچی تھی کہ سرکار کی طبیعت ناساز ہے تو صحابہ کی کیفیت بھی عجیب ہو گئی۔ ادھر جماعت کھڑی ہے، سب کی نیتیں بندی ہوئی ہیں، راوی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا، سرکار نے سوچا ہوگا میں بھی دیکھوں میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ جس گلشن اسلام کی آبیاری میں نے اپنے خون سے کی، جس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پتھر کھائے، گالیاں سہیں، صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، آج وہ گلشن اسلام تر و تازہ ہے، لہلہا رہا ہے، آج وہ تر و تازہ ہو رہا ہے، میں بھی دیکھوں میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ آقا نے پردہ ہٹایا، نیت بندے بندے سب نے اپنا چہرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا، سب نے اپنا چہرہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا۔ صحابہ نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا، یہ کیسی نماز ہو رہی ہے؟ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں اور چہرہ رسول اللہ کی جانب، آپ نماز میں چہرہ ادھر ادھر کریں فوراً فتویٰ لگ جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، قبلہ رخ آپ نہیں ہیں، نیت آپ کی بندی ہوئی ہے، لیکن آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی نماز ہے؟ قربان جاؤ ان صحابہ کی نماز پر، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، قبلے سے پھرنا نہیں ہے؟ ارے قبلے سے کہاں پھرے، وہ تو قبلے کے قبلے کی طرف پھرے، اگر انہوں نے چہرہ ادھر کیا تو کعبے کے کعبے کی طرف کیا، نیتیں بندی ہوئی ہیں، سب نے اپنا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کی طرف کر دیا، حضور کی زیارت کی۔ اور سرکار جانتے تھے کہ ارے یہ تو میرے ایسے دیوانے ہیں، ایسے عاشق ہیں کہ نیتیں توڑ دیں گے. سرکار نے دوبارہ پردہ ڈالا, فرمایا اتمو صلاتکم, جاؤ اپنی نمازوں کو پورا کرو. اور صحابہ کہتے ہیں واقعی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہ کرتے ہم نیتیں توڑ کر حضور کی طرف دوڑ جاتے. یہ ہے عشق کی نماز, یہ ہے محبت کی نماز. نہ ایسے غلام ہوئے دوسرے, نہ ایسا آقا دوسرا ہو. قربان جاؤ ان محبت کرنے والوں پر جنہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور انہی کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں, یعنی جو ذرے ان کی نالین سے لگے اگر وہ ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو. ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ان جیسی محبت, ان جیسی اطاعت, ان جیسی فرما برداری ہم تمام مسلمانوں میں پیدا فرمائے کہ سرکار سے ایسی محبت کریں, ایسے عشق کریں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.